मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 19 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। तो सूचनाएं दोस्तों यह है कि कल और परसों दो दिनों के लिए डेली ऑडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन कल बकायदे प्रेस क्लिपिंग्स जैसे आपको मिलती रही हैं उसी तरह से मिलेंगी, और साथ ही साथ आप लोगों को एक वीकली क्वेश्चन साप्ताहिक प्रश्न भी दिया जाता है, और जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है खासकर आपके अभ्यास करने के लिए। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे जो कोयला क्षेत्र का पूर्णतः निजीकरण किया गया है और खदानों की नीलामी की व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। और आज जो दूसरी घटनाओं की संख्या है वो काफी अधिक है। आप सबने न्यूज में सुना कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है, आप योजना भी कह सकते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। दोस्तों हालांकि इसका जो ड्यूरेशन है वो काफी कम है, मोटे तौर पर कह लीजिए कि लगभग 4 महीने का ड्यूरेशन है, ये मतलब बहुत लंबी योजना नहीं है। और चूंकि इसका संबंध अभी जो प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव को लौटे हैं उनसे है, इसीलिए कम समय रखा गया है। लेकिन ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो अपने गांव को लौट गए हैं प्रवासी मजदूर, उम्मीद की जा रही है कि वो जब लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो फिर से मजदूरी के लिए अपने अपने शहरों में जहां से आए हैं वो लौट आएंगे। लेकिन बाय द वे अगर वो नहीं लौट पाते हैं तो इस रोजगार योजना को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए 4 महीने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 3.5 महीने के बाद आपके प्री एग्जाम होने हैं। प्री एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्री एग्जाम की डेट होती है, जनरली जो मैंने वाच किया है 2 महीने पहले तक के प्रश्न होते हैं, 2 महीने पहले तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन चूंकि अब इसकी अवधि कुल 4 महीने की है, 4 महीने के लिए ये योजना शुरू की गई है, तो हो सकता है कि मेन एग्जामिनेशन में न आए, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए इस पर टोटल 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया है इसे। मैं प्री के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपसे बात कर रहा हूं। इसमें देश के 116 जिले रखे गए हैं कि 116 जिलों में ही केवल ये लागू किया जाएगा, ऐसा नहीं कि ये पूरे देश में। और 116 जिले के लिए भी जो राज्य चुने गए हैं उनका नाम आप ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो राज्य हैं वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड, ये 6 राज्य इसके लिए चुने गए हैं। और खासकर उन जिलों को चुना गया है जहां कम से कम 25,000 प्रवासी मजदूर तो कम से कम हो, यानी कि जो लौट करके आए हैं उनकी संख्या 25,000 के आसपास होनी चाहिए। तो ये थोड़े से तथ्य हैं, आपके दिमाग में ये बातें रहनी चाहिए। प्री एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो लगभग कुछ इसी तरह के प्रश्न होंगे। हाँ, इसके तहत जो काम किए जाएंगे उसके बदले में एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि संपदा का सृजन किया जाएगा, यानी कि हमारी संपदा कैपिटल का निर्माण हो सके। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, इस तरह की कोई संपदा बन सके। दोस्तों दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है वो न्यूज में आपने सुनी है कि भारत जो संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य बनाया गया है, चुना गया है कह लीजिए, इसमें बनाना नहीं होता है, इसमें बकायदे चुनाव होता है। और आपने न्यूज में सुना कि किस तरह से टोटल 193 कंट्रीज हैं उसमें से 184 वोट भारत को मिले हैं, जो बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा परिषद पर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। सुरक्षा परिषद आप जानते हैं कि एक तो महासभा होती है, जनरल असेंबली, उसमें तो सभी सदस्य होते हैं, जितने भी राष्ट्र हैं उसके सदस्य, वो सबके सबसे व्यक्तियों से वो महासभा बनती है, लेकिन एक सुरक्षा परिषद है, आप उसकी एक्सिक्यूटिव बॉडी कह लीजिए मोटे तौर पर। तो इसके 5 स्थायी सदस्य हैं जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। उसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, तो भारत 2 साल के लिए चुना गया है, 8वीं बार भारत इसमें चुना गया है, और 2021 एक साल पूरा होगा और 2022 दूसरा साल होगा, तो 2 सालों तक वह इसका सदस्य रहेगा। और जिस क्षेत्र के लिए चुना गया है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो है एशिया प्रशांत क्षेत्र, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो भारत वहां सुरक्षा परिषद में करेगा। आपको मालूम है कि जो 5 सदस्य हैं उन्हें स्थायी सदस्य कहते हैं, उनके पास तो वीटो पावर है, अगर किसी भी एक सदस्य ने किसी भी प्रस्ताव पर इनकार कर दिया तो फिर वो प्रस्ताव पारित हो ही नहीं सकता। अस्थायी सदस्यों की अपनी भूमिका है, उसके बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत जिस तरीके से चुना गया है और अनअपोज्ड चुना गया है, अकेला ही भारत उम्मीदवार था इसके बारे में, तो एक तो भारत की विश्व में जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है ये उसका प्रमाण है। इतने सारे वोट मिले हैं आप देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसके कद को बताता है। और साथ ही साथ जो एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात है कि भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का बहुत बड़ा दावेदार है और शुरू से वो दावा कर रहा है कि हमें भी स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। तो अस्थायी सदस्य उसका इस तरीके से बनाया जाना भी कहीं ना कहीं उसकी जो स्थायी सदस्यता की जो दावेदारी है उसको थोड़ा सा पुख्ता तो बनाता ही है। और ये जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की भारत की दावेदारी है, इसको लेकर के मेंस में प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। फ्रेंड्स, एक बात जो मैं यहां आपसे कहना चाहूंगा, खासकर जो कल की न्यूज से और ज्यादा स्पष्ट होता है, हालांकि शुरू से प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, आत्मनिर्भर सामान्य तरीके से तो यही है कि हम सारी चीजों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए, हमें किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े। लेकिन यहां जो प्रधानमंत्री का जो मंतव्य है वो स्पेशली इस बात को लेकर है कि आयात पर हमारी निर्भरता न रहे, जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं उस पर हमारी निर्भरता खत्म हो, हमें इंपोर्ट न करना पड़े, ये आत्मनिर्भरता है और हम एक तरह से एक्सपोर्टर बने, ज्यादा से ज्यादा हम निर्यात कर सके। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अभी जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है एक्चुअल में वो है क्या, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। दोस्तों, आज एक अखबार में जो हमारे मारुति, हमारा जो सुजुकी मारुति जो उद्योग है, जो मारुति कार बनाते हैं, उनके चेयरमैन का एक इंटरव्यू आया है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। इन्होंने देखिए अभी क्या हो रहा है कि चीन से बहुत सारी कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो चीन छोड़ करके दूसरे देशों में जा रही हैं, और उसमें जो ज्यादातर कंपनियां जा रही हैं, ये तीन देश आपको याद रहने चाहिए, ये मत छोड़िएगा कि भारत के अतिरिक्त दूसरे देशों में जा रही हैं। देखिए, कहने का अंदाज एक ही है कि वो भारत में कम कंपनियां आ रही हैं, दूसरे देशों में ज्यादा जा रही हैं। लेकिन अगर आप इसी को कहते हैं कि नहीं वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया की तरफ जा रही हैं, तो बात एकदम वजन वाली हो जाती है ना। तो यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये तीन नाम तो आपको याद रहने चाहिए, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया, इधर कंपनियां जा रही हैं। तो सवाल ये कि भारत की तरफ क्यों नहीं आ रही, जबकि भारत में उनको इतना बड़ा बाजार मिलेगा, हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे पास अच्छा मैनेजमेंट है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है, रूल ऑफ लॉ है, तो भारत में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने कहा कि दिक्कत यह है कि भारत में इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब बहुत महंगी हैं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगाया गया है, उनको जब किसी चीज की जरूरत होती है तो वो सारी की सारी चीजें महंगी मिलती हैं, बिजली महंगी मिलती है, सबसे कम सुविधाएं दी जाती हैं, सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। और सरकार कुछ ये धारणा लेकर के चलती है कि ठीक है, जो उद्योग जगत है ये खुद अपनी चीजें अपने ढंग से जुटाएगी, सब उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वस्तुओं की लागत अधिक हो जाती है, उत्पादन लागत अधिक हो जाती है, कीमत अधिक हो जाती है, तो हम वर्ल्ड मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो सरकार को चाहिए कि वह इंडस्ट्री को दी जाने वाली सुविधाओं में इजाफा करे, इसके बारे में भी उसे सोचना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय के बारे में। देखिए, इससे पहले भी जब COVID-19 का मुकाबला कर रहे थे और सरकार धीरे धीरे अनाउंस कर रही थी अपने पैकेजेस के, उसके तहत ही सरकार ने ये घोषणा की थी कि वो बहुत से क्षेत्रों को ओपन करेगी, आप यूं कह लीजिए कि उदारीकरण की तरफ और आगे बढ़ेगी, जिसमें कोयला और खनन क्षेत्र की बात कही गई थी, और बाकायदे अब उसका उद्घाटन होने जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि उद्घाटन हो ही गया होगा जब तक आप सुनेंगे। 41 कोयला ब्लॉकों को बाकायदे कमर्शियल माइनिंग के लिए खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इसके तहत होगा ये कि जो निजी कंपनियां हैं वो कोयला की खुदाई करेंगी और बकायदे उसका जो इस्तेमाल करेंगी वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगी, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगी, ये नहीं कि उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण रहेगा। और ये वो कंपनियां हैं देखिए जो अपने यहां कोयला आयात करती हैं, अपनी ऊर्जा की जरूरतों की पूरा करने के लिए कोयला आयात करती हैं, और अब जबकि इन्हें कोयला खदान खुद अनुमति मिल गई है वहां से कोयला निकालने की, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का जो कोयले का आयात है वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ने तो यहां तक एक उम्मीद जताई है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम कोयला के निर्यातक देश बन सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जो भारत की स्थिति है कोयला में, एक दो आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा आंकड़ों में उलझाने में मेरा विश्वास नहीं है, कि कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार भारत के पास है, चौथा सौ, यानी कि हमारे पास रिजर्व के मामले में हम चौथे सबसे बड़े राष्ट्र हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि कोयला के आयातक भी हम दूसरे सबसे बड़े, सबसे ज्यादा कोयला हम आयात करते हैं, जबकि भंडार हमारे पास इतना है। तो हम भंडारों की बहुत अच्छे तरीके से उत्खनन नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो जोर दिया गया है इसी बात पर है इस नीति के तहत, कि जो हमारे पास भंडार है हम उनका उत्कर्षण कर सकेंगे, उनकी बकायदे खुदाई कर सकेंगे। और जो हमारे कोयले के भंडार हैं, देखिए ज्यादातर वो पूर्वी भारत और मध्य भारत में है, इन क्षेत्रों में है, और इनके 16 जिलों में तो बहुत बड़े बड़े भंडार है, विशाल भंडार है। देखिए मैंने इस्तेमाल किया है शब्द का पूर्वी भारत और मध्य भारत, है ना, मैं अब डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप नक्शा अपने दिमाग में लाइए कि जब पूर्वी भारत कहा जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, और जब मध्य भारत कहा जा रहा है तो उसका क्या मतलब है। और इसमें से 16 जिले कोयला के विशाल भंडार वाले जिले हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी उम्मीद जताई है कि इसके खनन के कारण होगा कि इन क्षेत्रों के आसपास जो लोग हैं उनको अपने घर के पास ही रोजगार मिल सकेगा। अब बकायदे हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कोयला का उत्पादन हमारे यहाँ क्यों इतना ज्यादा नहीं है, वो खासकर हमारे जो औद्योगिक जगत की सीमाएं हैं उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास कैपिटल की कमी है, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है इस क्षेत्र में, चूंकि अभी PSU ही ज्यादा अधिकार रखते थे तो कॉम्पिटिशन भी नहीं था, जिसके कारण सही मायने में जो कोल रिसोर्सेज है उसका हम अच्छे तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, रश्मि यादव उन्नाव उत्तर प्रदेश से, अनूप राज, मोहम्मद रफी और अभिषेक रंजन रांची झारखंड से, आप सबका दोस्तों बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही मित्रों मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, ये दो दिन आपके बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हों, अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का भी ख्याल रखें, मेरी शुभकामनाएं, मेरा अभिवादन, नमस्कार।